जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा यमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा यमुना तीरा वन चारी राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राधा गिरधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरानिताय गौरनिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री परिषद श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन डिविडि फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 51 52 और 53 श्लोक क्रमांक 53 को पढ़ेंगे मुक्तम बकस्यात् उपलब्ध्या बालकाः रामादयः प्राणं इव इन्द्रियः गणः स्थान आगतं तं परिरभ्यं निवृत्ताः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीयवत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृताः प्रणीयवत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृताः प्रणीयवत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः माताजी
उपलभ्य बालका
इस प्रकार छूटा हुआ बका स्यात् बकासुर के मुख से उपलभ्य वापस पाकर बालकाः सारे बालक रामादयः बलराम इत्यादि प्राणम प्राण इव के समान इंद्रियः इंद्रियां गणः समूह स्थान आगतम अपने अपने स्थान पर जाकर तम कृष्ण को परिरभ्य चूमते हुए निवृताः संकट से मुक्त हुए प्रणीय एकत्र करके वत्सान बछड़ों को व्रजम एत्य व्रजभूमि लौटकर तज्जगुहु घटना का जोर जोर से बखान किया। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद श्लोक क्रमांक 51 से पढ़ेंगे। जब वैष्णवों के नायक कृष्ण ने यह देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़ लिया और सारे ग्वाल बालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला जिस तरह वीरन घास के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण भगवान की। उस समय स्वर्ग लोक के वासियों ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंदन कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुंदभी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने कृष्ण को पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बछड़ों को समेट कर वे ब्रजभूमि लौट आए जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। तात्पर्य, जब भी कृष्ण असुरों को मारने की विभिन्न लीलाएं करते तो ब्रजभूमि के वासी जंगल में हुई घटनाओं पर कविता बनाते। वे सारी कहानियां पद्यबद्ध कर लेते या पेशेवर कवियों से करवा लेते और तब इन घटनाओं को गाया करते। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि लड़के जोर जोर से गा रहे थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनते नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बकासुर के वध की लीला को यहाँ कहा जा रहा है। इस अध्याय में कृष्ण की बाल लीलाएं हैं संक्षेप में, और फिर आगे और लीलाओं का वर्णन होगा। दसवां स्कंद है ये श्री कृष्ण लीला। तो बकासुर का वध भगवान ने किया। इस लीला को हम लोग सुन चुके हैं कैसे बकासुर वहां पर आया। गर्ग संहिता में इस लीला को थोड़े से अलग तरीके से कहा गया है। वहां बताया गया है कि जब बकासुर आया और उसने श्री कृष्ण को निगल लिया तो उसके बाद सारे देवता भयभीत हो गए, और फिर देवताओं ने आक्रमण करना प्रारंभ किया। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड चलाया, शिव जी ने त्रिशूल चलाया, यमराज ने यमदंड चलाया, वायु ने प्रयास किया, अग्नि ने प्रयास किया, सारे देवताओं ने प्रयास कर लिया, लेकिन बकासुर मरा नहीं। बकासुर थोड़ा बहुत हताहत होता, थोड़ा बहुत उसको चोट लगती, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता। तो ऐसे सारे देवताओं ने प्रयास कर लिया, और तब फिर बकासुर जोर से गर्जना करने लगा और इन देवताओं को भगा दिया उसने। उस समय तक श्री कृष्ण अंदर ही थे, श्री कृष्ण को निगल चुका था। तो सारे देवताओं ने प्रयास किया लेकिन बकासुर को मार नहीं पाए। अर्थात इस पुराण में इस कथा को इसलिए कहा गया कि कभी कभी हम लोग जब सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने असुर को मारा तो हम लोग बहुत सरलता से ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, एक केवल एक बक के रूप में आया था या एक बतख के रूप में आया था तो मार दिया भगवान ने, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसलिए बताया गया कि ये कोई साधारण असुर नहीं थे जिनको कंस भेज रहे थे। कंस वैसे अपने मामा होने का कर्तव्य पूरा कर रहे थे। मामा का क्या कर्तव्य होता है, वो अच्छे अच्छे खिलौने अपने भांजे को भेजते हैं, ये मामा का कर्तव्य है ना। और आजकल देखते हैं हम लोग कई लोग ऐसे खिलौने भेजते हैं जो चाबी से चलते हैं, अभी शायद चाबी वाले नहीं होंगे, अभी बैटरी से चलते हैं या कोई और चीज से, तो कोई रोबोट है हिलता है। तो उस जमाने में भी कंस चाहता था कि अच्छे से अच्छे खिलौने भेजूं, इसलिए ऐसे खिलौने भेजता था जो बोलते थे, जो मारते थे, जो बड़े विशाल थे, ऐसे खिलौने रोज भेजता था। और कृष्ण रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले, हाँ भोजन करने से पहले, दोपहर का और शाम को वापस आने से पहले एक एक खिलौने को खेलकर तोड़ दिया करते थे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खिलौने आते हैं थोड़ी देर खेलते हैं उसके बाद तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। तो कृष्ण भी ऐसे ही करते थे। बकासुर बहुत बड़े दिखाई दिए तो उनके अंदर प्रवेश कर गए, और फिर जब मन हो गया खेल लिया तो फिर उसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया। तो ऐसे ये जो असुर होते थे ये कोई साधारण असुर नहीं थे, बड़े विशाल असुर हुआ करते थे, बड़े शक्तिशाली जिनसे देवता भी घबराते थे। तो ऐसे असुरों को कंस भेजा करते। तो खैर बकासुर का वध भगवान ने किया जैसे हमने अभी अभी पढ़ा यहाँ पर। ये बकासुर वैसे जितने भी असुर थे इनके इतिहास का वर्णन गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है कि अपने पूर्व जन्म में क्या थे और क्यों ऐसे असुर बन गए। वैसे हम सब के लिए ये भी सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सब असुर बने ज्यादातर किसी न किसी भक्त के प्रति अपराध करने से। तो जैसे बकासुर है, इसने अपराध किया, दो कहानियां दो कथाएं इनके विषय में हैं। एक इन्होंने शिवजी के प्रति अपराध किया, और एक बहुत बड़े ऋषि थे जजाली ऋषि, इनके प्रति अपराध किया। जब ये गए एक समय जजाली ऋषि के आश्रम के निकट और मछलियां पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो ऋषि ने मना किया कि किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उस जीव ने, क्यों उसको इतना कष्ट दे रहे हो। लेकिन इसने सुना नहीं, ये हयग्रीव का पुत्र था। हयग्रीव बहुत बड़े राक्षस, हयग्रीव राक्षस भी हैं और भगवान के अवतार भी हैं। तो हयग्रीव राक्षस का ये पुत्र था, इसका नाम था उत्कल, और इसने सुना नहीं क्योंकि अहंकार था। जब भगवान की कृपा से हम सबको कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है जो भगवान के ऐश्वर्य का अंश मात्र है, हमें अहंकार हो जाता है। जैसे अगर किसी को बहुत सा धन प्राप्त हो जाए जो भगवान के एक ऐश्वर्य का अंश मात्र है, सौंदर्य प्राप्त हो जाए, बल प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, वैराग्य प्राप्त हो जाए, ये सब तो केवल भगवान के ऐश्वर्यों का अंश मात्र है। अर्थात भगवान अपनी ऐश्वर्य को, अपनी शक्ति को उस व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो फिर अहंकार कैसा। अगर हम इस बात को जान लें कि हमारे पास जो भी बल है, जो सौंदर्य है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी कला है, ये केवल भगवान की है और भगवान हमारे द्वारा उसको प्रकट कर रहे हैं, तो फिर क्या हमें अहंकार होगा। जैसे एक बैंक में काम करने वाला कैशियर, कितना पैसा हाथ में होता है, रोज करोड़ों रुपया शायद बड़े बड़े बैंक में उसके हाथ में आता है और चला जाता है, क्या उसको अहंकार होता है कैशियर को कि देखो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, लोग मेरे सामने आकर खड़े होते हैं, पैसा मांगते हैं, मैं करोड़ों रुपया देता हूं। नहीं, उसको अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि इसमें से एक भी रुपया मेरा है ही नहीं, मुझे तो महीने के अंत में जो मेरी सैलरी मिलनी है, मेरी तनख्वाह मिलनी है, वही मेरा है। इसी तरह ये ऐश्वर्य सब भगवान के हैं, हमें तो भगवान ने एक थोड़ा बहुत निकाल कर दिया है, हमारा कोटा। ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने केवल थोड़ा दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मावृत कश्चित सद्धनम, ये बहुत थोड़ा सा आपके लिए निकाल के भगवान ने दिया है, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और वो भी ये जानना चाहिए कि ये भी भगवान ने दिया है, उस कैशियर को सैलरी भी बैंक ही देता है। तो इसीलिए अहंकार नहीं, लेकिन इनको अहंकार हुआ, बात सुनी नहीं, और फिर जजाली ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत ज्यादा मछली खाने का शौक है, तो फिर तुम बतख बन जाओ, बक बन जाओ, ताकि खड़े रहो और मछलियां पकड़ते रहो बस। तो फिर उस समय उन्होंने क्षमा याचना की, और क्योंकि जब भक्त श्राप देते हैं तो भक्तों का श्राप, भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों के द्वारा दिया गया ज्ञान, ये सब हमारे हृदय को शुद्ध करता है, ये भक्तों की महानता है। इसलिए अगर भक्त श्राप भी दे देते हैं, नारद मुनि ने कई स्थानों पर श्राप दिया, ऋषियों ने श्राप दिए, तो ये सारे श्राप ये वरदान होते हैं। तो फिर जजाली ऋषि ने कहा चिंता नहीं करो, जब कृष्ण आएंगे तो वो तुम्हारा वध करेंगे, तो मुक्त होगे। तो जब कृष्ण ने वध किया तो गर्ग संहिता वर्णन करती है कि आत्मा बका के निकल कर कृष्ण में प्रवेश कर गई, अर्थात वो मुक्त हो गया। तो ये कृष्ण की महानता है, ये कृष्ण है कि ऐसे व्यक्ति को जो उनका विरोध करता है, उनको मारने का प्रयास करता है, अधर्म का पालन करता है, उसको भी मुक्त करते हैं। भगवद गीता कहती है फिर भक्तों का तो कहना ही क्या, फिर ब्राह्मणों का, भक्तों का क्या कहना, वो तो मुक्त होंगे ही होंगे। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। लेकिन जब हम इन कथाओं को सुनते हैं, चाहे बकासुर का वध हो, अघासुर का वध हो, पूतना का वध हो, त्रिनावर्त का वध हो, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं अपने शिक्षा अमृत में कि इनसे हमें सीखना चाहिए। ये सारे असुर हमारे हृदय में भी विराजमान हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सूची दी है, पूतना से प्रारंभ करके कि ये कौन से असुर हैं जो हमारे हृदय में विराजमान हैं, चाहे वो पूतना हो, शक्तासुर हो, फिर तृणावर्त हो या फिर बकासुर हो, तो ये हमारे हृदय में विराजमान है अनर्थों के रूप में। जब हम इन लीलाओं को सुने तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस अनर्थ को अपने हृदय से निकाल सकें। भक्ति विनोद ठाकुर एक चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय के इन असुरों को हम मारेंगे नहीं, हम ब्रज भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात हम श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो अनर्थ हैं, ये रोक देते हैं हमें श्री कृष्ण की ओर जाने से। और अनर्थ क्या है? अनर्थ किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी गुण, ऐसा कोई भी लक्षण जो हमें श्री कृष्ण से दूर ले जाए, वो अनर्थ है। फिर इस भौतिक जगत में उसको बहुत गुणगान हो सकता है उस कार्य का, उस लक्षण का, लेकिन अगर श्री कृष्ण से परे ले जाते हैं तो वो अनर्थ है। और भक्ति मार्ग में चार प्रकार के अनर्थ होते हैं, बहुत सावधानी से हमें इनको जानना चाहिए। एक प्रकार के अनर्थ होते हैं जो पूर्व में किए गए पापों से उत्पन्न होते हैं। हम सब ने पाप किए हैं, क्षमा कीजिएगा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यह भौतिक शरीर है, इस जगत में है, इसका अर्थ है कि हमने पाप किए हैं। और वो कैसे पता चलता है? हृदय में अनर्थों के द्वारा। तो चार प्रकार के अनर्थ होते हैं। पहला, पूर्व किए गए पाप कर्मों से उत्पन्न अनर्थ। हम सब ने पाप किए और इससे अभी भी हृदय में अनर्थ आते हैं। कैसे अनर्थ आते हैं? हम भोग की इच्छा करते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। आचार्यों ने इसको विभाग किए हैं, अलग अलग रूप में समझाया है, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में आते हैं। मूलतः हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर मानते हैं अपने आप को और शरीर के ही कार्यों में लगते हैं, तो ये अनर्थ है। और हम सब इस अनर्थ में हैं। ये नहीं सोचिएगा कि हमने भगवद गीता पढ़ ली, हमने श्री प्रभुपाद का आश्रय ले लिया, अब हम मुक्त हो गए, अब हम शुद्ध भक्त हो गए। ये बहुत प्रारंभिक अवस्था है जब भक्त ये मानने लगता है। अभी तो हम सब ये भी नहीं जान पाए हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, केवल सुना है, केवल पढ़ा है, साक्षात्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम में से कितने लोग आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं? बहुत कम। तो इसीलिए ये उत्पन्न होता है। दूसरा प्रकार का अनर्थ उत्पन्न होता है पूर्व में किए गए पुण्य कार्यों से। हमने जो पुण्य कार्य किए हैं, जिसको इस जगत में लोग बहुत अच्छा मानते हैं, हॉस्पिटल खुलवाना, भूखों को भोजन कराना, इससे भी अनर्थ उत्पन्न होता है। और तीसरा, ठीक से भक्ति ना किए जाने से अनर्थ उत्पन्न हो जाता है, जिसको चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है कि जैसे पौधा उत्पन्न बढ़ता है, उसके साथ साथ अवांछित पौधे भी बढ़ जाते हैं। और चौथा, भक्ति में की गई गलतियों से, अपराधों से उत्पन्न अनर्थ, अर्थात जैसे नाम अपराध इत्यादि। तो ये सारे अनर्थों के कारण हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमें इन अनर्थों को मारना चाहिए। तो बकासुर ये कौन से अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है हमारे हृदय में? बकासुर कैसे बैठा है हमारे हृदय में? बकासुर बैठा है छल देने की, छल करने की इच्छा के रूप में, पाखंड के रूप में, धोखा देने के रूप में। और ये हम सब के हृदय में, हम सब छल करना चाहते हैं। तो जब भक्ति भी करते हैं तो भक्ति में छल क्या होता है? भक्ति में छल कभी कभी शुरुआत में हम बाहरी दिखावा करते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हो गए, ये हम मान लेते हैं मन में। प्रारंभिक अवस्था में जब भी कोई भक्ति में आता है तो उसको धीरे धीरे लगने लगता है कि मैं तो बहुत महान भक्त हो गया, शुद्ध भक्त हो गया। हमें ध्यान है जब हमने भक्ति प्रारंभ ही की थी, वैसे अभी भी प्रारंभ की अवस्था में ही हैं, लेकिन जब शुरुआत में आए आए थे तो हम पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो वहां पर ऐसा हुआ हमें पता नहीं था, पहली बार जगन्नाथ मंदिर में गए थे। तो जैसे ही गए प्रवेश किया तो एक पंडा आया सामने और उसने अचानक हमें पकड़ा और उसने हमारे गले में हार डाल दिया, ये भगवान का हार, और उसकी टोकरी में प्रसाद था वो हमारे मुख में डाल दिया प्रसाद। हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं डाल दिया ये लो। तो कुछ क्षण के लिए हमें लगा कि अरे हम तो शुद्ध भक्त हो गए, इस पंडे ने पहचान लिया हमें है ना, नहीं तो और किसी को नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता था वो सबको करते हैं, लेकिन हम कह रहे किसी और को नहीं कर रहा, हमें आकर हार पहनाया, हमें इसने प्रसाद खिला दिया, तो अब तो हम शुद्ध भक्त हो गए हैं, इसने पहचान लिया है, नहीं तो जगन्नाथ जी का पंडा है, जगन्नाथ जी की सेवा करता है, हमारे लिए ऐसा क्यों करेगा। तो एक क्षण के लिए मन में आ गया लेकिन हम तो शुद्ध भक्त हो गए। और फिर अचानक उस पंडे ने कहा पैसा निकालो। तो हमने कहा अरे पैसा तो नहीं है, हम तो ब्रह्मचारी, पैसा नहीं है, नहीं, उसने हार निकाल लिया वापस तो वो दो क्षण में जो शुद्ध भक्त बने थे वो सारा धाराशाही हो गया, समझ में आ गया, भगवान ने समझा दिया कि कौन हो तुम, कहां स्थिति है तुम्हारी। तो ऐसा होता है, हम अपने स्तर की ऊंची भक्ति करने का प्रयास करते हैं जिस स्तर पर नहीं है, ये छल है। अभी हम वृंदावन में थे कुछ समय, तो वृंदावन में हमने देखा कई भक्त ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी भक्ति का प्रचार करते हैं, ऐसी भक्ति का पालन करते हैं जो उनके स्तर की नहीं है, जिसको उनको बोलना भी नहीं चाहिए लेकिन वो उसकी चर्चा करते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। हम लोग एक समय प्रसाद ले रहे थे गौशाला में बैठकर, तो अचानक एक माता जी आ गए और उनके हाथ में कृष्ण की एक मूर्ति थी, याद है आपसे, हाँ, कृष्ण की एक मूर्ति थी, बहुत अच्छा सा श्रृंगार किया हुआ था उन्होंने और कृष्ण को लेकर घूम रही थी। तो वहां पर प्रसाद लेने के लिए आई तो भक्तों ने मना किया कि ये यहाँ सबके लिए नहीं है प्रसाद, ये केवल जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो एकदम नाराज हो गई, जानते नहीं हो कौन है, हम राधा हैं और ये कृष्ण है। तो सब लोग हैरान हो गए कि अचानक राधा रानी कहां से प्रकट हो गई वृंदावन में, और इतना वो गुस्सा करने लगी, इतना उल्टा सीधा कुछ तो बोलने लगी, जबरदस्ती गई प्लेट लिया और अपने आप डाल लिया प्रसाद। अभी भी क्या, एक तो माता जी थे, हम लोग क्या कर सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे, दो तीन माता जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रुकी नहीं, लेके बैठ गई और फिर ऐसे उन्होंने लिया, उसको ले रही हैं और कृष्ण को ऐसे रखा है, उसको खिला रही हैं, ये सारे कार्य, और मतलब ये दिखला रही हैं कि वो राधा हैं, ये कृष्ण हैं और इत्यादि इत्यादि। ये कोई भक्ति नहीं है, ना ही ये कोई भक्ति का स्तर है, ये दिखावा है, ये छल है, ये कपट है। तो व्यक्ति को कपटहीन होना चाहिए। बकासुर कपट का प्रतिनिधित्व करता है, और जो व्यक्ति जिस भाव से श्री कृष्ण को देखता है, कृष्ण के पास आता है, श्री कृष्ण उसी भाव में उसके सामने प्रकट होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। इसीलिए भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, श्री कृष्ण के सखाओं को देखकर कहा गया है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां परनरदारकेन साकु विजुः कृतपुण्यपुञ्जः। इसमें कहते हैं कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्य, जिन लोगों को ब्रह्म सुख की कामना है उनके सामने ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यम गतानाम, जो दास्य हैं, जो दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं, पर दैवतेना अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं, और मायाश्रितानाम, जिन्होंने माया का आश्रय लिया है, नरदारकेना, उनको वो साधारण बालक के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे लोग कहते हैं आज भी कि कृष्ण आए, साधारण बालक थे, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत बड़ा कार्य कर लिया लेकिन भगवान नहीं। तो माया श्रितानाम नरदारकेना, तो ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि ये सब हमारी इच्छा पर आधारित है। अब द्वेष व्यक्ति क्यों करता है, कपट क्यों करता है, इच्छा के कारण। हमारी मूल इच्छा है श्री कृष्ण की सेवा करने की, लेकिन जब वो इच्छा परिवर्तित हो जाती है अपने इंद्रियों को भोग कराने की, तो वो नाश का कारण बनती है। आपको एक उदाहरण देते हैं, आप सब ने टाइटैनिक नाम सुना है ना, ऐसा जहाज जिसको भगवान भी डुबा नहीं सकते, ऐसे उन्होंने घोषणा की थी, पहली ही बार में डूब गया। अगर शायद घोषणा नहीं की होती तो शायद भगवान बचा देते थे, लेकिन घोषणा कर दी, ऐसा जहाज जिसको भगवान भी डुबा नहीं सकते, टाइटैनिक। लोगों ने बहुत पैसा दिया उसमें जाने के लिए, देखिए क्या मूर्खता है, अपनी मृत्यु के लिए लोगों ने पैसा दिया, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, सब आ जाओ। तो टाइटैनिक ये जब चल रहा था तो किस पे चल रहा था, पानी पे, अर्थात जहाज को चलने के लिए बड़े अच्छी तरह से इस जगत को पार करने के लिए क्या लगता है, पानी। लेकिन जब उसी पानी का रूप बदल गया, वही पानी बर्फ में बदल गया, तो वही उसके नाश का कारण बना। टाइटैनिक कैसे डूबा था, बर्फ से टकरा गया, बर्फ के पहाड़ थे, आइसबर्ग कहते हैं, तो बर्फ से टकरा गया और इसीलिए सारा डूब गया। तो वही पानी है, केवल रूप बदल गया है। वही इच्छा है हम सबकी, केवल रूप बदल गया है। हम उसी इच्छा को, जो श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा है, आज अपनी भोग में, अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा रहे हैं, इसीलिए हमारे नाश का कारण है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि, काम कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। प्रेम क्या है, श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना, एक ही इच्छा। लेकिन जब वही इच्छा अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए होती है तो वो नाश का कारण बनती है। खुद की ही इच्छा, हम ही अपने नाश का कारण बन जाते हैं। आपने और एक उदाहरण सुना होगा, एक बिच्छू का, बिच्छू जानते हैं, स्कॉर्पियो, ये हर एक को डसता है, इसके शरीर में इतना जहर होता है कि ये डसता है दूसरों को, लेकिन वही जहर कभी कभी उसकी मृत्यु का कारण बनता है। जिस जहर से वो दूसरों को डसता है वही जहर उसकी मृत्यु का कारण बनता है। जब बहुत गर्मी होती है या बहुत अग्नि जैसी जल रही हो आसपास, जिससे बिच्छू को बड़ा कष्ट होता है, तो उस समय बिच्छू उस अग्नि के कष्ट को दूर करने के लिए अपने ही शरीर को काटने लगता, अपने ही शरीर में डंक मारने लगता है, और उस डंक मारने से वही जहर जो उसी के शरीर में है, लेकिन जब उसके डंक के द्वारा उसके शरीर में जाता है तो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। आश्चर्य है ना, वो उसी के शरीर से निकला है। इसी तरह हमारी ही इच्छा है, हमारे से ही निकली है, लेकिन हमारे ही नाश का कारण बनती है। इसीलिए ये जो धोखा देने की इच्छा, ये कामना हमारे हृदय में है, इसको दूर करना चाहिए। इसको दूर किए बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि वैष्णवों के लिए सबसे पहली योग्यता वो है सरलता, सरल जीवन। और अगर वो आगे कहते हैं कि सरलता नहीं है, हृदय में पाखंड है, हृदय में धोखा देने की इच्छा है, कपट है, तो ये अपराध है। इसीलिए कपटता को सरलता से मारना चाहिए, इसका नाश करना चाहिए। बड़ा सरल जीवन होना चाहिए हम सबका। जिसके हृदय में कपट है उससे भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं, जब बलि महाराज की कथा आती है, आप सब जानते हैं बलि महाराज की कथा। बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान को, भगवान ने सब कुछ ले लिया और फिर भी उन्हें बंदी बना लिया। देखिए कितना भगवान जीवन में कष्ट दे सकते हैं। बलि महाराज ने सब कुछ समर्पण किया जानते हुए कि ये विष्णु हैं, गुरु ने मना किया मत दो, सब कुछ हर लेंगे तुम्हारा। बलि महाराज ने कहा अगर ये विष्णु है तो वैसे भी सब कुछ इनका है, मेरा है ही क्या, मुझे तो देना, और मैं झूठा नहीं बनूंगा, मैंने वचन दिया है, वचन देकर झूठा बनने वाला व्यक्ति ये पृथ्वी पर बोझ है। बलि महाराज कहते हैं पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों का, बड़ी बड़ी नदियों का बोझा सहन कर सकती है, लेकिन एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति का बोझा नहीं सहन करती, ये बलि महाराज कहते हैं। तो उस समय बलि महाराज ने सब कुछ अर्पण कर दिया, पानी लिया, जल में छोड़ दिया, आप जो चाहें, आपको तीन पग भूमि देते हैं। भगवान ने बंदी बना लिया क्योंकि तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, दो ही पग में मैंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं। बलि महाराज ने कहा मेरे सर पर रखिए, लेकिन फिर भी भगवान ने बंदी बनाया। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, इतने सारे लोग खड़े थे, सब कह रहे थे भगवान आपने जो किया सही किया। बलि महाराज की पत्नी कहने लगी जो किया सही किया, इनको अहंकार हो गया था अपने ऐश्वर्य का, आपने जो किया सही किया। केवल ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी सहन नहीं कर पाए, और ब्रह्मा जी के प्रश्न में ही ब्रह्मा जी ने यह बतलाया कि भगवान आप कैसी चीजें स्वीकार करते। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप तो केवल पत्र पुष्प और फल अगर कोई बिना कपट की भावना से देता है, बहुत स्पष्ट ये शब्द इस्तेमाल किया कि अगर ये चीजें कोई आपको बिना कपट की भावना से देता है तो आप स्वीकार करते हैं, और यहां बलि ने बिना कपट की भावना से, उसके हृदय में कपट नहीं था, बिना कपट की भावना से बलि महाराज ने सब कुछ अर्पण किया जिसमें पत्रम पुष्पम फलम भी आता है, उनके राज्य में ये सब था, तो आप तो केवल उससे संतुष्ट हो जाते हैं। बलि महाराज ने सब कुछ समर्पण किया, आपने वो क्यों बंदी बनाया उसको, ये प्रश्न किया था ब्रह्मा जी ने। तो खैर ब्रह्मा जी उस प्रश्न में ये कहते हैं कि भगवान आप केवल उस चीज को स्वीकार करते हैं, चाहे पत्र पुष्प फल हो, जो बिना कपट के दिया गया। इसलिए भगवान भाव ग्रहण करते हैं। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अपने एक भजन में, मन तुम्हें किशोर वैष्णव, ये क्या कपट कर रहे हो, तुम सोचते हो कि निर्जन भजन अकेले रहकर मैं भजन करूंगा, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा है तुम लोगों को दिखलाना चाहते हो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं कितना महान भक्त हूं, मैं केवल भगवान का नाम लेता हूं अकेले में जाकर। रूप गोस्वामी कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति। अगर आप ऐसी भक्ति कर रहे हो जो शास्त्रों में नहीं दिया गया है, एकांत में जाकर कर रहे हो ऐसी भक्ति जो नियम से नहीं है, उत्पात एव कल्पते, केवल उत्पात मचाती। तो आप सोचिए हरि भक्ति है, हम सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में ये भावना है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बना हुआ दिखलाना चाहता हूं लोगों को, लोग आकर देखना चाहिए मैं कितनी बढ़िया से जप करता हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं पाखंड है, धोखा दे रहे। हम सब के मन में आ जाता, हर एक के मन में आता, कोई पुजारी पूजा कर रहा है, जब मंदिर खाली हो तो उसको इतना आनंद नहीं आता है, मंदिर भरा हो उत्सव के दिन तो पुजारी का भी हाथ जरा बढ़िया से घूमने लगता है। पुजारी सब पुजारियों का नहीं, क्षमा चाहते हैं, उनके हृदय में भी आ जाता है कि लोग आज मुझे देख रहे, इतने लोग मुझे बड़ी अच्छी से, कपट की भावना है। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान के दर्शन भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, हमें भगवान की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, और फिर उसके लिए जो भी कष्ट हो उसको लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ये भक्ति है। भक्ति ये नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो मैं करूं, मुझे झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मुझे कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता मैं कुकिंग नहीं करूंगा, मुझे तो केवल आरती करना अच्छा लगता है मैं आरती करूंगा। इंद्रिय भोग है ये, इंद्रिय तृप्ति है, ये अहंकार है, ये कृष्ण भक्ति नहीं, अहंकार की भक्ति है। भक्ति क्या है? कृष्ण की भक्ति में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी कष्ट आए वो सुख है मेरे लिए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो परम सुख है। इसलिए जब हम धोखा देने की भावना में होते हैं, ऐसे कार्य करते हैं थोड़ी बहुत मान सम्मान पाने के लिए, सस्ती चीजों को पाने के लिए, जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं ये कपट कहलाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कपट को मन में ना ले, इस बकासुर का वध करें, क्योंकि ऐसे कपट से श्रद्धा का नाश होता है, हमारी श्रद्धा टूट जाती है श्री कृष्ण में, क्योंकि हम कपटी हैं, हम धोखा दे रहे हैं श्री कृष्ण को। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ऐसा धोखा नहीं दें वैष्णवों को, भक्तों को, भगवान को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से समझाया कि अगर श्री कृष्ण के नित्य संगी भी वैष्णवों को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो नाश होता। यदुवंशी गए, ब्राह्मण इत्यादि थे, नारद मुनि इत्यादि वहां पर उपस्थित थे, यदुवंशियों के मन में आया थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए। सांब को उन्होंने एक स्त्री के रूप में बना दिया, उसका मुख ढक दिया और कुछ पेट में रख दिया, जैसे मानो ये गर्भवती स्त्री है। लेकर आए नारद इत्यादि मुनियों के पास, ऋषियों के पास, और कहने लगे ये स्त्री बड़ी लज्जा कर रही है, ये कुछ पूछना चाहती है लेकिन आपसे पूछ नहीं सकती, आप सब महान ऋषि हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, कृपया बताइए इसके लड़का होगा या लड़की। सांब है, पुरुष है, केवल कुछ रख लिया है, धोखा देने लगे, कपट करने लगे। और ऋषि मुनियों ने, नारद आदि मुनियों ने क्या कहा? ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि इसके पेट से, ये जो इसके पास है, इससे ना तो लड़का होगा ना लड़की, इससे एक ऐसा हथियार निकलेगा, इससे एक ऐसा वज्र निकलेगा जो तुम्हारे सारे वंश का नाश करेगा। घबरा गए सांब, एकदम गिराया नीचे तो देखा कि सही में वो निकला। इसलिए धोखा, तो भगवान ने ये लीला क्यों की? ये दिखलाने के लिए कि वैष्णवों को कभी धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और ये भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सरल जीवन जीते हैं तो फिर धोखा देने की प्रवृत्ति से बाहर आ सकते हैं। इसलिए भक्ति के जीवन में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए, जिनमें से पहला है हमें प्रयास करना चाहिए कि हम असत संग त्यागें। नीति शास्त्र में भी कहा गया है त्यज दुर्जन समागम भज साधु समागमम, अहो कुरु पुण्य अहो रात्रम। उसमें कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, त्यज दुर्जन समागम, जो दुर्जनों का समागम या दुर्जनों की संगति है उसको त्यागना चाहिए। भज साधु समागमम, हमेशा साधुओं का संग करना चाहिए। कुरु पुण्य अहोरात्रम, दिन रात हमें पुण्य करना चाहिए। और स्मर नित्य अनित्यताम, हमेशा स्मरण करना चाहिए। किस चीज का स्मर? नित्य अनित्यताम, ये जगत अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये भोग अनित्य है, ये अहंकार अनित्य है, केवल नित्य है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण के भक्त। अगर इस भावना में हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, और साथ ही साथ जो व्रत हम लेते हैं उसका कड़ाई से पालन करते हैं, तब हृदय से कपट भाव दूर जा सकता है। वैसे तो इस विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ है, आचार्यों ने बहुत कुछ समझाया है, लेकिन सार में इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये कपट हमारे हृदय से ज्ञान के द्वारा, सेवा के द्वारा और सरल जीवन के द्वारा जा सकता है। तो जब ये बकासुर के वध की कथा को पढ़ते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने हृदय में बैठे हुए बकासुर का वध करें, सरल जीवन जिएं, भक्तों के संग में रहें, कपट नहीं करें और जितना हो सके हम सेवा में लगें, ज्ञान प्राप्त करें और इसके द्वारा ही हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन के परम गति भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कोई गलतियां? प्रश्न ऐसा है कि जब हम माला करते हैं तो हमारे दिल में और भी इच्छा होती है माला करने की, तो क्या वो भी स्वार्थ है? चाहे आप एक माला करें, अर्थात चाहे आप 16 माला करें या बहुत ज्यादा माला करें, ये अच्छा है कि माला करने से और माला करने की इच्छा होती है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रमुख है। अगर हमें माला करने की इच्छा इसलिए हो रही है कि हमें आनंद आ रहा है, या हमें इच्छा इसलिए हो रही है कि हम लग रहे हैं कि और कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम इतना मधुर है, और कृष्ण का नाम, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, तब हमें तो और माला करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे हृदय में ये भावना आ रही है कि मेरे को लोगों ने देख लिया है, 16 माला पूरी हो गई, उसके बाद भी मैं 2 घंटा माला लेकर बैठा हूं तो लोग देख रहे हैं, तो मुझे माला और करनी चाहिए ताकि लोगों की प्रशंसा मिल सके, मुझे माला और करनी चाहिए ताकि केवल मैं ही शुद्ध हो सकूं, मुझे माला करनी चाहिए ताकि मैं महान बन सकूं, ये धोखा है, ये छल है। लेकिन मुझे माला ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके। इसलिए हमारा जप भी केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जब हम जप करें तो जप करने के पहले और जप करने के बाद हमें श्री कृष्ण को कहना चाहिए कि कृपया मेरे इस छोटे से प्रयास से आप प्रसन्न हो जाइए। तो अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की बात है तो आप जितनी भी माला करें वो धोखा नहीं, लेकिन मन में क्या है वो महत्वपूर्ण। हमारे भक्ति के कार्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका उद्देश्य, इसलिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, तो थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा, माइक नहीं है वहां।
हरे कृष्ण, बताया कि साधु पाप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसके हिस्से होता है, तो विद्वान को जो पाप दिया साधु ने, उसमें विद्वान का क्या हिस्सा है?
बहुत अच्छा। साधुओं ने जो श्राप दिया यदुवंश को, क्योंकि कृष्ण बहुत समय से सोच रहे थे कि इन लोगों को वापस कैसे भेजा जाए, इनको तो कोई मार नहीं सकता, यदुवंशी इनको मारना किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन भगवान अपनी लीला समाप्त करना चाहते थे, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो 2 चीजें हुई, पहला गांधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण को, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है ऐसे ही तुम्हारे वंश के लोग आपस में लड़कर मरेंगे। श्री कृष्ण ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, कब से सोच रहा था कैसे होगा, ये तो अच्छा हो गया। और दूसरा जब साधुओं ने श्राप दिया, तो साधुओं ने जो श्राप दिया उससे यदुवंशियों को ये लाभ हुआ कि वे लोग फिर अब कृष्ण लीला को समाप्त करके फिर जहां कृष्ण गए उनके साथ फिर से लीला करने के लिए वहां चले गए, तो ये उनका लाभ था। अगर साधु श्राप नहीं देते तो वो जाते कैसे, क्योंकि कोई इस पृथ्वी पर नहीं था जो इन लोगों को मार सकता, तो इनको भी तो लीला समाप्त करनी थी। तो इस कारण से भगवान ने ये योजना बनाई कि साधुओं ने श्राप दिया और फिर वे लोग वापस चले गए। और दूसरी बात, अगर इसको दूसरी तरीके से देखा जाए कि ये सारे यदुवंशी भगवान के शुद्ध सेवक हैं, नित्य संगी हैं, इनके लिए श्राप और वरदान कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो भगवान की लीला में आते हैं, शामिल होते हैं, चले जाते हैं। ये श्राप और वरदान ये हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बद्ध हैं, जो भूल चुके हैं कृष्ण को, ये लोग कभी कृष्ण को नहीं भूलते, भले ही लीला में ये कोई ना कोई रोल अदा करते हैं लेकिन कभी कृष्ण को भूलते नहीं। तो जो कृष्ण को नहीं भूलता उसके लिए वरदान और श्राप कोई मायने नहीं रखता। उसको आप वरदान दीजिए कि तुम्हें अच्छा होगा, कृष्ण के दर्शन होंगे, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो सदैव दर्शन कर रहे हैं कृष्ण के। और उनको आप श्राप दे दीजिए, तुम्हारा बुरा होगा, तुम नरक में जाओगे, उनको उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर नरक में चले भी गए तो भी श्री कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। तो इसलिए उनके लिए कोई लाभ नहीं, लेकिन फिर भी इस लीला में इसलिए किया ताकि वे अपनी लीला को समाप्त कर सके। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का कुछ पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए, माइक पर बोलेंगे तो सब कुछ सुना देंगे।
हरे कृष्णा, अब तो मैं जो दूसरे व्यक्ति का काम नहीं करना।
हाँ जी,
तो हर काम हम उनको पहले समझेंगे कि इसका क्या होता है।
हाँ,
हमको प्रचार करने के लिए जाना पड़ता है, तो दूसरे व्यक्ति की बात मिलता नहीं।
हाँ,
हमारे पिता चले जाए तो किसी को कहीं नहीं मिलता, तो उनके साथ हमारा काम करे तो उसकी बात ही होता है, तो हम उसके क्या।
प्रश्न ऐसा है कि अगर विषय व्यक्ति का संग करना पड़े तो कैसे करना चाहिए, राइट? वही प्रश्न है, हमें तो करना पड़ता है, हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं। या प्रश्न ये है कि विषय व्यक्ति को कैसे पहचाने, दोनों। विषय व्यक्ति को पहचानने के लिए कोई बड़े मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों में दिया गया है विषय व्यक्ति का क्या अर्थ है, जो बहुत ज्यादा भोगों में आसक्त है उसकी दो मिनट बात करने से आप समझ जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जब बोलता है, जब तक बोलता नहीं है बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा बहुत सुंदर श्लोक है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है सभायाम वस्त्र चेष्टितः, वो बहुत अच्छे से सभा में वस्त्र वगैरह पहनकर बैठा है, दिखने से तो लग रहा है क्या आदमी है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तब पता चल जाता है इसका क्या स्तर है। तो आप दो मिनट किसी व्यक्ति से बात करें, आप समझ सकते हैं कि ये विषयी व्यक्ति है या फिर थोड़ा बहुत साधु या स्वभाव का है। तो विषयी व्यक्ति का संग नहीं करने का अर्थ क्या है, हमें उसका संग नहीं लेना चाहिए, अपना संग देना चाहिए। एक उदाहरण है, एक बार एक बंदर था जो नदी के किनारे रहता था, और नदी में ही एक घड़ियाल रहता था, मगरमच्छ, दोनों में मित्रता थी। तो एक समय मगरमच्छ की जो पत्नी थी, जो नदी के बीच में रहती थी, उसने इच्छा की कि मुझे ना बंदर का हृदय खाना है, बंदर का जो दिल है उसको खाना है। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं ले आता हूं बंदर को, तुम उसको फाड़ कर खा लेना। तो वो गया बंदर के पास और बंदर से कहा कि आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें थोड़ी सैर कराऊं, अपने घर ले जाऊं, तो तुम आ जाओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो बंदर मित्र था, उसने कोई शक नहीं किया, बैठ गया और घड़ियाल चलने लगा। तो थोड़ा ही पानी में आगे गया था, तो क्योंकि घड़ियाल भी मित्र था तो उसने कहा कि दरअसल मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, क्योंकि अब पानी में आ गया था, बंदर कूद नहीं सकता था और पानी में घड़ियाल शक्तिशाली होता है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी की बड़ी इच्छा है कि वो बंदर का दिल खाए, तो इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तो बंदर ने कहा अरे अरे पहले क्यों नहीं बताया, इतनी सी बात थी। उसने कहा हाँ क्यों, बोले पहले बताना चाहिए था। नहीं क्या हो गया, अरे मैं अपना जो दिल है वो तो पेड़ पर टांग कर आ गया हूं मैं, तो तुरंत जल्दी वापस चलो, मैं पेड़ से अपना दिल ले आता हूं और फिर तुम्हारी पत्नी को खिला देंगे। देखा ऐसी बात है, हाँ ठीक है वापस चल गए। तो वापस आया और बंदर कूद के पेड़ पर बैठ गया, उसने कहा हरि बोल बहुत अच्छा। तो हम लोग भी जब ऐसे घड़ियालों से मिले हैं, हम लोग बंदर हैं, प्रभुपाद के बंदर है ना, हंसते कूदते खेलते खाते बंदर। तो हम लोग भी जब प्रभुपाद की सेवा के लिए ऐसे घड़ियालों से मिले जो विषय व्यक्ति हों और जो चाहते हों कि हमारे ऊपर प्रभाव करके हमारे जो हृदय में थोड़ी बहुत भक्ति है उसको नाश कर दें, तो फिर ऐसे भक्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ हमें बड़े सावधानी से उन्हें अपना दिल नहीं देना चाहिए। यानी अब हम उनके द्वारा प्रभावित नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए कि हमारे वाक्यों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें सिखलाया है उन शिक्षाओं के द्वारा हम उनका हृदय बदल सकें। तो इसलिए ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है प्रचारक को। प्रचारक मंदिर में आश्रम में अपने आप को बंद करके नहीं बैठ सकता। प्रभुपाद ने लिया, कहाँ कहाँ जाके प्रचार किया। हम लोग तो आजकल जैसे हम आपको प्रवचन दे रहे हैं, आप सारे तो भक्त हैं, आप सब बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। प्रभुपाद ने किनको प्रवचन दिया था, जिनको कोई श्रद्धा नहीं थी उनको भक्त बनाया। तो हम तो सब अनुयायी हैं, तो हमें तो ऐसे लोगों को ही प्रचार करना। हमें केवल बहुत साधु और बहुत धार्मिक लोगों को प्रचार नहीं करना है, उनको प्रचार की क्या आवश्यकता है। हमें तो जाकर ऐसे लोगों को प्रचार करना है जो माया में पड़े हुए हैं, जो विषयी हैं, उन्हीं को प्रचार करना है। तो इसलिए प्रभुपाद का आंदोलन ही यही है, पतित पावन। तो हम लोग जैसे हम लोगों का थोड़ा बहुत उद्धार हो गया प्रभुपाद की शरण में आके, कम से कम हमने बुरे काम छोड़ दिए, तो अब उस चीज को हमें सारे जगत को फैलाना है। ये सच्ची दृष्टि में प्रभुपाद के बंदर बनने की योजना है। तो आप सबको प्रभुपाद का बंदर बनना चाहिए और सारे घड़ियालों को बदल देना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी के? समय भी वैसे काफी हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने इतने समय सहन किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।